नमस्कार, शनिवार 20 जुलाई के लिए ये है न्यूज फ्लैश और मैं हूं अनीता बरार। ऑस्ट्रेलिया के लोगों और छोटे व्यवसायों को वैश्विक तकनीकी व्यवधान का फायदा उठाने की कोशिश करने वाले घोटालों से सावधान रहने की चेतावनी दी जा रही है। कल उस वैश्विक तकनीकी बाधा ने अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों को प्रभावित किया। एयरलाइंस, बैंक, मीडिया और खुदरा व्यवसायों में क्राउड स्ट्राइक सॉफ्टवेयर अपडेट में खराबी के कारण वैश्विक स्तर पर विंडोज में व्यवधान आया और वो उससे प्रभावित हुए। टेक्सास स्थित साइबर सुरक्षा कंपनी क्राउड स्ट्राइक के सीईओ जॉर्ज कर्ट्स ने इस व्यवधान के लिए माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर अपडेट में खराबी वाले कोड के लिए जल्दी ही एक समाधान ढूंढ लिया गया था। उन्होंने जोर देकर कहा कि इसमें कोई खतरा पैदा करने वाला व्यक्ति शामिल नहीं था या यहां कोई भी साइबर हमला नहीं था। साइबर सुरक्षा मंत्री क्लेयर ओग्नीन ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के संचालकों के साथ आपातकालीन बैठकें की गईं और सेवाएं धीरे धीरे बहाल हो रही हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को पहले ही बैंक विवरण लेने के लिए टैक्स संदेशों और फोन कॉल्स वाले घोटालेबाजों की रिपोर्ट मिल चुकी है। तकनीकी व्यवधान के कारण फेडरल राजनीतिज्ञ बॉब कैटर ने नकदी को प्रचलन में बनाए रहने की मांग की है। उनका कहना है कि डिजिटल तकनीक पर पूरी तरह से निर्भर रहना जोखिम भरा है। संयुक्त राज्य अमेरिका सहित दुनिया के अन्य हिस्सों में भी नकदी रखने की मांग की गई। कल के तकनीकी व्यवधान से दुनिया भर के हवाई अड्डों पर सबसे अधिक परेशानी ट्रैवल इंडस्ट्री को हुई, जहां सिस्टम में समस्याएं और देरी की शिकायत की गई। अब एयरलाइंस इस आउटेज के प्रभाव से पूरी तरह से उबरने की कोशिश कर रही हैं। मेलबर्न में हवाई अड्डे ने पुष्टि की कि बैगेज की समस्या के कारण चेक इन प्रक्रिया धीमी हो रही थी, जिसके कारण जेटस्टार की 150 उड़ानें रद्द हो गईं। जेटस्टार का कहना है कि कुछ प्रभाव अभी भी जारी है जो कुछ उड़ानों को प्रभावित कर सकते हैं। यात्रियों से यात्रा के लिए अतिरिक्त समय रखने और धैर्य रखने का आग्रह किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संगठन एक्शन एड ने संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च न्यायालय के उस ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत किया है, जिसमें कहा गया है कि फिलिस्तीनी क्षेत्रों और वहां की बस्तियों पर इसराइल का कब्जा गैर कानूनी है तथा इसे यथाशीघ्र वापस लिया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसे विश्व न्यायालय के रूप में जाना जाता है, उसके न्यायाधीशों द्वारा दिया गया ये एडवाइजरी ओपिनियन कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इसका महत्व है और ये इसराइल के लिए समर्थन को कमजोर कर सकता है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार हिंसक विरोध प्रदर्शनों के फैलने के कारण बांग्लादेश अपनी सेना तैनात करेगा और पूरे देश में कर्फ्यू लगाएगा। छात्र कोटा प्रणाली के खिलाफ रैली कर रहे हैं, जिसके तहत 30% सरकारी नौकरियां वेटरन्स के परिवार के सदस्यों के लिए आरक्षित होंगी। उनका कहना है कि इस कदम से सत्ताधारी पार्टी से जुड़े लोगों को फायदा होगा। राजधानी ढाका में शुक्रवार को हुए दंगों में दर्जनों लोग मारे गए। प्रदर्शनकारियों ने वहां सड़कें जाम कर दी और पूरे शहर में आगजनी देखी जा सकती थी। पत्रकारों का कहना है कि उन्होंने भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस छोड़ते देखा। हिंसा में मारे गए लोगों की सही संख्या अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि अधिकारियों ने इंटरनेट और फोन सेवाएं बंद कर दी हैं। अन्य समाचारों और समुदाय के समाचारों के लिए आप हमारी फेसबुक और हमारे वेब पेज sbs.com.au/hindi से जुड़े रहें। न्यूज फ्लैश समाप्त हुआ।